आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र नायकों को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लेकर आयोजन को भव्य बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पीएसी के स्थापना दिवस समारोह का किया शुभारंभ, कहा सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद। और प्रदेश में बढ़ता जा रहा है ठंड और घने कोहरे का असर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन और समारोह स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रेरणा स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आयोजन की भव्यता में किसी प्रकार की कमी न होने पाए। एक रिपोर्ट।
आयोजन को लेकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। 65 एकड़ क्षेत्र में फैले इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण पर करीब 232 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65-65 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन महान विभूतियों के जीवन और विचारों को संजोने के लिए परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया गया है। लखनऊ से मुमताज अली के साथ समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
भारतीय रेल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि बटेश्वर हॉल्ट स्टेशन को क्रॉसिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया है। रेल मंत्रालय ने आगरा डिवीजन के बटेश्वर को डी श्रेणी के हॉल्ट स्टेशन से बी श्रेणी के क्रॉसिंग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी पीएसी के स्थापना दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 78 वर्ष से पीएसी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण का रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी दे सकता है। उन्होंने कहा कि सुशासन की वजह से प्रदेश में निवेश आ रहा है और प्रदेश विकसित हो रहा है। लोकसभा में कल से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक जी राम जी 2025 पर चर्चा शुरू हो गई है। यह कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक गांवों के विकास को सुनिश्चित करेगा। विधेयक के अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी की कानूनी गारंटी का प्रस्ताव है। साथ ही फसलों के सीजन में कृषि कार्यों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। योजना का प्रदेश के किसानों ने स्वागत किया है। जौनपुर के प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह ने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया।
मैं मोदी सरकार के इस नए विधेयक का समर्थन करता हूं और इससे गरीबों को लाभ होगा। मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है। उससे लाभ क्या है, पहले 100 दिन मनरेगा में मिलता था काम करने के लिए, अब 125 दिन मिलेगा। इससे हमारे गाँव का विकास भी होगा और गरीबों को लाभ भी होगा।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कल कानपुर नगर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मक्का उत्पादन में वृद्धि गोष्ठी और कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि इस वर्ष मक्के के लिए 2400 रुपए एमएसपी निर्धारित की गई है, इससे किसानों को फायदा होगा।
इस साल मक्के की फसल के लिए 2400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित है, जो लगभग गेहूं के बराबर ही है। तो मक्के के भीतर कम परिश्रम और कम पानी के भीतर यह फसल किसान को मिल सकती है और इसके द्वारा बहुत सारे उद्योग धंधे खड़े होने के नाते, उनका रॉ मटेरियल होने के नाते जो है किसान को एक बेहतर आमदनी, मार्केट रेट इसका बेहतर मिल सकता है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2026 के सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में स्नातक और परास्नातक के 350 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। प्रयागराज में यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि दो चरणों में 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। पहला चरण 24 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा। इसमें 10 मंडलों आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, बस्ती, देवीपाटन, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या और आजमगढ़ में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। वहीं दूसरे चरण में 2 से 9 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं 8 मंडलों में होंगी। प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पहले चरण में प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। योजना के तहत राजधानी लखनऊ सहित 35 जिलों में पुस्तकों का चयन पूरा कर लिया गया है। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से ग्रामीण युवाओं को अपने गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने कल अयोध्या में अयोध्या देवीपाटन और प्रयागराज मंडल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में तीनों मंडलों के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि 13 से 15 दिसंबर के बीच तीनों मंडलों में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए सपोर्टिव सुपरविजन के तहत विशेष टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों की जाँच के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कार्यवाही की जाएगी।
तीनों मंडलों में जो काम हुआ है और जो काम हो रहा है उसमें सुधार की गुंजाइश। लगभग 700 से ज़्यादा बिंदुओं पर हमने चेकिंग कराई है। इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हैं, हमारे सब सेंटर भी हैं, PHCs भी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, जिला अस्पतालें भी हैं और जो विशेष अस्पताल हैं वो भी हैं।
प्रदेश भर में ठंड और घने कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। आज सुबह भी राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश भर में अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनजीवन, यातायात और निराश्रितों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने, ब्लैक स्पॉट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने, टीमें तैनात करने, क्रेन और एम्बुलेंस को 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रखने तथा टोल प्लाजा पर लाउड स्पीकर से चालकों को कोहरे की चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खराब विजिबिलिटी में यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी निर्देश दिए कि निराश्रितों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी गाना स्टेडियम में कल रात खेले जाने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को घने कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों के बीच पांचवां और आखिरी मैच शुक्रवार को अहमदाबाद में होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र नायकों को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लेकर आयोजन को भव्य बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UPPSC के स्थापना दिवस समारोह का किया शुभारंभ। कहा, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी। पूर्व DGP प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद। और प्रदेश में बढ़ता जा रहा है ठंड और घने कोहरे का असर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।